दिन भर 5 जून दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदर। सऊदी अरब सहित कई देशों ने कतर के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़े। अमेरिका ने बीच बचाव की पेशकश की।
We certainly would encourage the parties to sit down together and address these differences.
इसरो ने अब तक के सबसे वजन वाले रॉकेट को लॉन्च किया।
640 टन भार है इसका। अगर इससे तुलना की जाए तो 200 से भी ज्यादा हाथियों का वजन के बराबर ये रॉकेट है। और इसके अंदर जो पैसेंजर है, रॉकेट तो एक टैक्सी हो गई, पैसेंजर इसमें एक जी सेट करके सैटेलाइट है, जो एकदम नए किस्म का सैटेलाइट है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। सऊदी अरब समेत 6 देशों ने कतर के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए हैं। इन देशों ने कतर पर चरमपंथ को समर्थन देने का आरोप लगाया है। सऊदी अरब की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कतर इस्लामिक स्टेट समेत कई चरमपंथी संगठनों के करीबी है। खाड़ी देशों ने कहा है कि वो अपने देशों से कतर के राजनयिकों को वापस भेज रहे हैं। कतर ने कहा है कि उस पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। पड़ोसियों की ओर से अचानक और नाटकीय तौर पर उठाए गए इस कदम से वो अलग थलग महसूस कर रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में पुलिस का कहना है कि ऑरलैंडो में हुई गोलीबारी की एक घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। रिपोर्टों के मुताबिक गोलीबारी की घटना आज सुबह हुई। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर स्थिति अब स्थिर है, यानी माना जा रहा है कि गोलीबारी थम चुकी है। इस मामले में जल्दी ही आधिकारिक बयान आ सकता है। ये घटना बीते साल एक नाइट क्लब में हुई गोलीबारी की पहली बरसी के हफ्ते भर पहले हुई है। बीते साल की घटना में 49 लोगों की मौत हो गई थी। लंदन में हुए हमले के 2 दिन बाद आज से ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए प्रचार दोबारा शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री टेरेजा मे चरमपंथ पर रोक लगाने और पुलिस से जुड़े रिकॉर्ड को लेकर बचाव की मुद्रा में है। मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन ने कहा है कि गृहमंत्री रहते हुए पुलिसकर्मियों की संख्या 20,000 घटाने के लिए टेरेजा मे को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं टेरेजा मे का कहना है कि उन्होंने पुलिस की शक्तियों में इजाफा किया है और चरमपंथ रोधी बजट को बढ़ाया है। वहीं लंदन के एक पूर्व पुलिस अधिकारी क्रिस कली का कहना है कि संसाधनों की कमी प्रशासन के सामने सबसे बड़ी रुकावट है। उनका कहना है कि पूर्व अधिकारी खुफिया जानकारियों पर प्रभावी कार्रवाई तय करने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ अनुभवी अधिकारियों की बड़ी संख्या है। मुझे यकीन है कि अगर मौका मिले तो इस मामले पर काम करने के लिए वापस आ जाएंगे। उन्हें इस बात पर ध्यान लगाने को कहा जा सकता है कि कोई भी खुफिया सूचना नज़रअंदाज न हो। वो जानते हैं कि इसके आधार पर कैसे काम किया जाता है। वो एक सूचना के आधार पर कह सकते हैं कि इस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये थे लंदन के एक पूर्व पुलिस अधिकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन का कहना है कि दक्षिण चीन सागर में अपने अधिकार वाले द्वीप पर सैन्य जरूरत के मुताबिक निर्माण करना उसका अधिकार है। अमेरिका ने चीन पर इस क्षेत्र के सैन्यीकरण करने का आरोप लगाया था। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ख्वा चुनयिंग ने कहा कि अमरीका को दक्षिण चीन सागर के विवाद में ज़्यादा रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा, दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता के लिए संबंधित पक्ष क्षेत्र के देशों के प्रयासों का सम्मान और समर्थन करते हुए एक दूसरे के प्रति रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, बजाय इसके कि वो एक दूसरे का विरोध करते रहें। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत ने GSLV Mk3 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। ये भारत का अब तक का सबसे भारी रॉकेट है। इसका वजन 640 टन और ऊंचाई 140 फुट है। इसमें देश में विकसित क्रायोजेनिक इंजन लगा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के वैज्ञानिकों को इसे तैयार करने में 15 साल का वक्त लगा है। इसरो ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लॉन्च की सराहना की है। तुर्की ने 130 लोगों की सूची जारी करते हुए कहा है कि अगर सूची में शामिल लोग 3 महीने के अंदर देश में वापस नहीं आते तो उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। इनमें अमेरिका स्थित एक मुस्लिम धर्म गुरु का भी नाम है, जिन्हें तुर्की प्रशासन बीते साल तख्तापलट की नाकाम कोशिश का जिम्मेदार बताता रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय विषय से। कई अरब देशों जिसमें सऊदी अरेबिया और मिस्र भी शामिल है ने कतर के साथ सभी कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए हैं। उन्होंने कतर पर क्षेत्र में असंतुलन फैलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कतर इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे चरमपंथी संगठनों का समर्थन कर रहा है, लेकिन कतर इसका खंडन करता रहा है। सऊदी समाचार एजेंसी SVA का कहना है कि सऊदी अरब ने इस तेल समृद्ध देश से लगी अपनी सभी सीमाएं बंद कर दी हैं, जिससे कतर के साथ उसका जमीनी, समुद्री और वायु संबंध टूट गया है। कतर ने इस फैसले को अनुचित बताया है और कहा है कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस अभूतपूर्व कदम को शक्तिशाली खाड़ी देशों के बीच एक बड़ी दरार के रूप में देखा जा रहा है। इन सभी देशों के अमेरिका से काफी नजदीकी संबंध हैं। इन देशों के अपने पड़ोसी देश ईरान से भी संबंधों में पिछले दिनों काफी गिरावट आई है। सऊदी अरब ने वक्तव्य जारी कर कतर पर ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों से सांठगांठ करने का आरोप लगाया है। सबसे पहले कतर से संबंध तोड़ने वाला देश बहरीन था, इसके बाद सऊदी अरब और फिर इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, यमन और लीबिया ने कतर से अपने संबंध विच्छेद कर लिए। उधर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए अमरीकी विदेश मंत्री रैक्स टिलरसन ने कहा है कि अमरीका इस गतिरोध को दूर करने में मदद कर सकता है। विदेश मंत्री टिलरसन बोले, हम चाहेंगे कि सभी पक्ष एक साथ बैठकर अपने मतभेदों को दूर करें। अगर वो समझते हैं कि इसमें हमारी कोई भूमिका हो सकती है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ये जरूरी है कि खाड़ी के सभी देश एकजुट रहें। अमरीकी विदेश मंत्री। संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद एक राजनीतिक विश्लेषक सुल्तान अल कसीमी का कहना है कि इन देशों के बीच सैनिक भिड़ंत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर संबंध तुरंत बेहतर नहीं होते तो उनके बीच सैनिक टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि कतर अभी भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य है, इसलिए ये खतरा बाहरी नहीं है बल्कि ये आंतरिक खतरा है। राजनीतिक विश्लेषक सुल्तान अल कसीमी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही दिल्ली के चांदनी चौक या करोल बाग की याद आ जाती है। दक्षिण एशिया के यहां रहने वाले लोगों के लिए ये कोई पहेली नहीं है और इसका नाम है साउथ हॉल। ब्रिटेन में गुरुवार को चुनाव होने हैं, ऐसे में यहाँ रह रहे लोगों की क्या समस्याएं हैं और वो खुद को किस पार्टी के करीब पाते हैं। विदित मेहरा की रिपोर्ट।
कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा।
अगर आप एक भारतीय हैं और ब्रिटेन घूमने आए हैं और आप भारत को काफी मिस कर रहे हैं तो साउथ हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत आ गए हैं। सड़कों पर लगी दुकानें जहां मिलता है सस्ता मेकअप का सामान, CDs, जलेबियां और तरह तरह के खाने का सामान। साउथ हॉल की मार्केट में आकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप करोल बाग या फिर चांदनी चौक में आ गए हों। पर यहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों को साउथ हॉल अब उतना रास नहीं आ रहा जितना आज से तकरीबन 5 साल पहले आता था।
मेन जो बूढ़े हैं इनको तो दूसरे भी हैं, जो कंसर्न है वो ये सेफ्टी का।
इधर डर लगता है कभी कभी, पैसे निकालने के लिए टीम रात के टाइम में निकालने के डर लगता है, स्टैबिंग होता है कभी कभी रात के टाइम आफ्टर 1 o'clock। जितने भी गलियों हैं वहाँ पे उसको ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग दारू पीते हैं गलियों में, किसी को डर लगता है रात के टाइम में आफ्टर 1 o'clock। अभी भी आप स्टेशन में जाएगा तो साइकिल मिलेगा विदाउट व्हील, इतना तो हमारे इंडिया में भी नहीं होता है।
साउथ हॉल में क्लीनिंग ज़्यादा नहीं है, पहले क्लीनिंग होती थी रोड्स पे, अभी क्लीनिंग नहीं है ज़्यादा,
थोड़ी ज़्यादा हो रही है।
और पुलिस आ जाती है अगर?
पुलिस तो लेट आते हो तो नहीं आते जल्दी नहीं आते।
ट्रैफिक नहीं कंट्रोल हो रहा ना, कि एवरी टाइम तो स्कूलिंग टाइम हो जा, वैसे भी आप जब भी साउथ हॉल से गुजरते हो तो नॉर्मली ट्रैफिक में फंसते ही फंसते हो।
साउथ हॉल में रहने वाली मिसेज लाडवा के घर में इसी साल चोरी हुई और वो कहती हैं कि साउथ हॉल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
Open the door and everything, take it and go up.
इस साल 5 फरवरी को शाम 7 बजे मेरे घर में चोरी हो गई। चोर सब कुछ ले गए। साउथ हॉल अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
लोगों में आगामी चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। कुछ ने अपनी राय सार्वजनिक नहीं की और कुछ ने खुल के अपने समर्थन की बात कही।
मेरे ख्याल में तो जब ये लेबर आएगी तो हमारे लिए ये सूटेबल है, और जो इनके रूल्स हैं वो हम एशियन लोग हैं वो सूटेबल हैं, हम तो सपोर्ट करेंगे लेबर को ही।
जिस साउथ हॉल में कभी भारत की छवि दिखती थी, अब वहाँ लूटपाट, मारपीट, ड्रग्स और डर का माहौल है। सबको ये उम्मीद है कि 8 जून को चुनाव के बाद साउथ हॉल की हालत में सुधार आएगा। विदित मेहरा, BBC हिंदी, लंदन।
भारत के अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसरो ने अब तक के सबसे वजन वाले रॉकेट GSLV Mark III को लॉन्च किया है। ये रॉकेट 640 टन का है, जो अब तक के सबसे वजनी संचार उपग्रह को अंतरिक्ष लेकर जा रहा है। अब इस मिशन की सफलता पर निर्भर करेगा कि निकट भविष्य में भारत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज सकेगा या नहीं, इसलिए क्योंकि यही रॉकेट भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाएगा। GSLV Mark III के लॉन्च के सिलसिले में BBC संवाददाता सलमान रावी ने वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला से बात की।
अब इस लॉन्च की अहमियत इस बारे से आती है, कई कारण हैं इसके। एक, ये भारत का सबसे भारी रॉकेट है, 640 टन भार है इसका। अगर इससे तुलना की जाए तो 200 से भी ज्यादा हाथियों का वजन के बराबर ये रॉकेट है, और इसके अंदर जो पैसेंजर है, रॉकेट तो एक टैक्सी हो गई, पैसेंजर इसमें एक GSAT करके सैटेलाइट है, जो एकदम नए किस्म का सैटेलाइट है, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और भारत का बनाया हुआ सबसे भारी सैटेलाइट है। भारत का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है वो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, और इस कॉस्ट इफेक्टिव नेचर के मारे दुनिया की नजरें भी इस लॉन्च पे टिकी हुई है। दूसरी एक बड़ी बात ये भी है इस लॉन्च की कि यही रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark III आने वाले टाइम में भारत के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाने में मदद करेगा। तो ये रॉकेट जो है एक नई पायदान तय करेगा भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए।
फरवरी में भी भारत ने 104 सैटेलाइट भेजकर रिकॉर्ड बनाया था। ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
अमेरिका, रूस और चाइना, ये 3 कंट्री भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम से काफी आगे हैं। इन्होंने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेजे हैं, जो भारत ने नहीं किया है अभी तक।
तो क्या अब हम उम्मीद करें कि अब एस्ट्रोनॉट्स भेजने की भी तैयारी हो रही है?
भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का मानना है कि आने वाले टाइम में कभी न कभी भारतीय एस्ट्रोनॉट, जिसको गगननॉट या व्योमनॉट का नाम दिया जा रहा है, उसको जरूर श्रीहरिकोटा से भेजा जाएगा। लेकिन उसके लिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने, जिसको कहते हैं करीबन $3 बिलियन या 12 से 15 हजार करोड़ रुपए की मांग की है भारत सरकार से। तो जैसे स्पेस सूट है वो भारत के एस्ट्रोनॉट का तैयार है, मैंने खुद देखा है अपने आप से, क्रू मॉड्यूल का टेस्ट हुआ था, अब आने वाले टाइम में एक पैड अबॉर्ड टेस्ट भी होने वाला है। और ये जो रॉकेट है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark III, ये 10 टन भार तक लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। तो इसकी इतनी ताकत है कि 2 से 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में ले जाने की काबिलियत रखता है।
नासा का जो मावेन मार्स जो मिशन था उसमें $671 मिलियन खर्च हुए थे, लेकिन आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात कही थी, तो शायद भारत ने बहुत ही कम पैसे खर्च करके ये अचीव किया।
देखिए, भारत का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है वो नो डाउट लो कॉस्ट हाई वैल्यू प्रोग्राम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके कई कारण हैं। एक, हमारे यहाँ लो वेजेस होती हैं, हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, और उसके अलावा जो कंपोनेंट की कॉस्ट है वो कम होती है, सरकार से फंडेड है तो इसमें कोई प्रॉफिट का मार्जिन नहीं होता है, बाकी इस पे इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं होती क्योंकि सरकार से फंडेड है, अगर रॉकेट फेल हो जाए तो भी भरपाई टैक्स पेयर ने करनी है, रॉकेट सक्सीड हो जाए तो भी टैक्स पेयर को ही बेनिफिट आना है।
तो अब तक ये 640 टन से ज्यादा का कभी रॉकेट छोड़ा नहीं गया अंतरिक्ष में।
बहुत अहम लॉन्च है भारत के लिए, ये कम्युनिकेशंस के दौर में गेम चेंजर का काम करेगा, आने वाले टाइम में भारत के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में मदद करेगा, और भारत के लिए ये बहुत कॉस्ट सेविंग करेगा, क्योंकि अभी जब आप बाहर से लॉन्च करते हैं तो लॉन्च बहुत महंगे पड़ते हैं।
विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला से बात कर रहे थे सलमान रावी। ये بی بی سی ہے, آپ دن بھر سن رہے ہیں ریحان فضل کے ساتھ. کشمیر کے باندی پورہ میں سی آر پی ایف کیمپ پر چرم پنتھی حملے کو سرکشا بلوں دوارا ناکامیاب کرنے کے بعد شری نگر میں آتنکی حملے کی آشنکا جتاتے ہوئے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. آج صبح تڑکے باندی پورہ میں سی آر پی ایف کے کیمپ پر چار فدائین پرتھکتا وادیوں نے حملہ کیا تھا, جسے سی آر پی ایف کے جوانوں نے اسفل کر دیا. شری نگر سے ماجد جہانگیر کی رپورٹ.
راجدھانی سری نگر سے 40 کلومیٹر دور اتری کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے سنبل علاقے میں سوموار صبح 4 بجے کے قریب اس سمے علاقہ گولیوں اور دھماکوں سے گونج اٹھا جب چرم پنتھیوں نے سنبل میں سی آر پی ایف کی 45ویں بٹالین کے ایک کیمپ پر فدائین حملہ کرنے کی کوشش کی, اور جوابی کارروائی میں سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس نے 4 چرم پنتھیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے. یہ آپریشن قریب 45 منٹ تک جاری رہا. پولیس نے چرم پنتھیوں سے بھاری ماترا میں ہتھیار اور گولہ بارود برامد کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. جموں کشمیر پولیس کے ادھیکش شیش پال وید نے میڈیا کو بتایا اس بیچ آج سری نگر میں الگ وادی نیتا یاسین ملک کو گرفتار کیا گیا, جبکہ حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز مولوی عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کیا گیا ہے. دونوں ہی نیتا بزرگ الگ وادی نیتا سعید علی شاہ گیلانی کے گھر پر بلائی گئی بیٹھک میں شامل ہونے جا رہے تھے. دونوں ہی نیتا این آئی اے کی اور سے کشمیر کے کئی الگ وادی نیتاؤں اور بیوپاریوں کے گھروں پر بیتے 2 دنوں سے چھاپہ ماری کو لے کر بیٹھک کرنے والے تھے. یاسین ملک نے گرفتاری سے پہلے میڈیا سے بات چیت میں کہا,
آج ہماری میٹنگ تھی سعید علی شاہ گیلانی صاحب کے گھر پہ, جس میں نیروائی صاحب اور مجھے جانا تھا, لیکن حالات یہ ہیں کہ ہمیں ملنے بھی نہیں دیا جا رہا اور ہمیں گرفتار کر کے لیا جا رہا. ایک بار پھر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ این آئی اے کے ریڈ, این آئی اے کا خوف اور دہشت سے یہ تحریک کمزور نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ جو فریڈم فائٹر ہوتے ہیں جیل مصیبت انٹراگیشن سینٹروں میں رہنا یہ ان کے لیے فخر ہوتا ہے.
گورتلب ہے کہ بیتی شنیوار اور اتوار کو این آئی اے نے کشمیر میں 14 سے زیادہ الگا وادیوں اور بیپاریوں کے گھروں اور دفتروں پر چھاپے مارے ہیں. سماچاروں کے انوسار این آئی اے نے ان چھاپوں میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ نقدی سمپتی اور کچھ اہم دستاویز ضبط کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے. وہی الگا وادیوں نے این آئی اے کی چھاپہ ماری کو نندنیا بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بھارت سرکار اور ان کے پالیسی سازوں کی بوکھلاہٹ ہے جس کے لیے این آئی اے کو استعمال کیا جا رہا ہے. پریس کو جاری ایک بیان میں حریت کانفرنس نے آروپ لگایا ہے کہ این آئی اے کی طرف سے کی گئی چھاپہ ماری کا اصل مقصد الگا وادیوں کو فرضی معاملوں میں پھنسانا اور خوف زدہ کرنا ہے. بانڈی پورہ میں چرم پنتھیوں کو مارنے کے بعد وہاں کئی ایک جگہوں پر سرکار مخالف پردرشن کیے گئے. حالیہ دنوں میں دکشنی کشمیر میں حزب کمانڈر سبزار احمد بٹ کو مارے جانے کے بعد اب تک 8 سے بھی زیادہ چرم پنتھی مارے جا چکے ہیں. ماجد جہانگیر, بی بی سی سری نگر.
بہار میں انٹرمیڈیٹ پریکشا کے نتیجے آئے, لیکن چرچا نمبروں پر ہونے کے بجائے ٹاپرز کی مارک شیٹس پر سمٹ گئی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بار بورڈ کی پریکشا میں کسی بھی سنکائے کا ٹاپر 90% انک بھی نہیں لا سکا, جبکہ دوسرے بورڈز میں اتنے انک حاصل کرنے والوں کی سنکھیا 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں میں ہے. کمی مارکنگ سسٹم میں ہے یا کچھ اور؟ پٹنہ سے منیش شانڈل کی رپورٹ.
بیتے مہینے روپالے پردے پر فلم ہاف گرل فرینڈ آئی تھی. اس کا ہیرو مادھو جھا بہار سے ہے اور دیش کے نامچین کالجوں میں سے ایک سینٹ اسٹیفنس میں پڑھائی کرتا ہے. وہی سینٹ اسٹیفنس جس میں داخلے کے لیے عام طور پر 95% مارکس بھی کم پڑ جاتے ہیں. اس فلم کی بات اتنی ہی, آگے چرچا لگاتار خبروں میں بنے ہوئے بہار انٹرمیڈیٹ کے نتیجوں کی ہوگی. ان نتیجوں کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ٹاپ کرنے والے چھاتروں کو انی بورڈز کے مقابلے کافی کم انک ملے ہیں. کسی بھی سنکائے کے ٹاپرز کو 90% انک بھی نہیں ملے, جبکہ سی بی ایس ای اور دوسرے بورڈز میں سینکڑوں کی تعداد میں 90% یا اس سے زیادہ انک چھاتر اسکور کر رہے ہیں. گیا کالج کی سونی کماری نے 81% انک لا کر کامرس سنکائے میں دوسرا استھان حاصل کیا ہے. بہار بورڈ کے کنجوسی والے مارکنگ طریقے پر وہ کہتی ہیں,
یہ ٹاپرز اتنا مارکس پہ ٹاپ کر گئے ہیں, یہ تو خود نہیں لگتا کہ اور مارکس آنا چاہیے, تب ٹاپ کرتے ہیں تو اور زیادہ اچھا سے پتا. ان مارکس کم کیوں دیتا ہے یہ تو ہم کو بھی نہیں پتا, کیونکہ سی بی ایس ای والوں کو 99.6% میں ٹاپ, میرا 81% نہیں ہو گیا. اگر ہم کولکاتہ یا دہلی میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو तो मेरा तो 81% ही है और बाकी सबका 95% अबव है, तो इसमें एडमिशन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये।
दरअसल सोनी जैसी परेशानी का सामना बिहार के ऐसे हजारों छात्र करेंगे जो बिहार से बाहर निकलकर किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज में दाखिले की ख्वाहिश रखते हैं। एसोसिएशन फॉर स्टडी एंड एक्शन लंबे समय से बिहार में शिक्षा के सवालों पर काम कर रहा है। इसके सचिव अनिल कुमार राय बताते हैं कि लो मार्किंग पैटर्न लंबे समय से छात्रों के लिए चिंता का विषय रहा है। वे कहते हैं,
असर तो यह है कि छात्र डिमोरलाइज्ड होते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में उनका अंकों के आधार पर जहां एडमिशन होना चाहिए वहां पर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है और इस तरह उनमें एक इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स है सो डेवलप करती है और उनको उचित अवसर नहीं मिल पाता है। हम लोग का यह लंबे समय से यह डिमांड रहा है, हम लोग मांग करते रहे हैं कि सब जगह राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह का कोर्स, एक तरह की के एक समय में परीक्षा और एक तरह की मूल्यांकन पद्धति हो।
AKP यादव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनके मुताबिक बिहार बोर्ड ने लगभग CBSE का ही सिलेबस अपनाया हुआ है। छात्रों को उच्च अंक मिले इसके उपाय में वे कहते हैं,
तो पहले तो क्वेश्चन फ्रेमिंग होनी चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब सवाल है उसका आंसर प्रॉपर बनना चाहिए ताकि जो टीचर इवेलुएट करे उसको रेडीमेड आंसर हो ताकि प्रॉपर मार्किंग हो सके। तो वहाँ जरूरत है कि हम टीचर को ट्रेन करें कि भाई मार्किंग कैसे की जाए, कई लाइन बच्चे कई लाइन आंसर चाहिए, कई लाइन बच्चों ने लिखा है, करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं है, स्पेलिंग अगर नहीं मिस्टेक है तो सब ठीक है, कितना पेपर हम फुल नंबर देंगे, कोई मैथ बनाया है वो पार्शली करेक्ट है तो उसको हम नंबर देंगे, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करेंगे।
बिहार बोर्ड का दावा है कि उसने इस बार नकल रोकी और मूल्यांकन में पारदर्शिता बरती है, लेकिन जानकारों का कहना है कि उसे आगे से परीक्षा से लेकर मार्किंग पैटर्न में भी सुधार करने चाहिए ताकि यहाँ के भी प्रतिभाशाली छात्र बाहर निकलकर उच्च शिक्षा की प्रतियोगिता में शामिल हो सकें। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं इंदु पांडे और राजेश जोशी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और मेरे साथ हैं इंदु पांडे।
नमस्कार।
बहुत ही ध्यान से और सोच समझ के आपने धीमी आवाज में नमस्कार कहा, इसकी कोई खास वजह है?
क्योंकि हफ्ता शुरू हुआ है ना।
अच्छा, तो चिट्ठियां क्या क्या हैं आपके पास और ईमेल कौन कौन से हैं?
सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमोद सबरवाल के ईमेल से। त्रिकुटा नगर जम्मू से ये लिखते हैं कि 4 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में खेले गए क्रिकेट मैच की जानकारी जिस अंदाज में आपने दी काबिले तारीफ है।
जी हाँ, बर्मिंघम में हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विदित मेहरा बर्मिंघम में मौजूद थे और यहाँ पर जैसा कि हमारे श्रोताओं को मालूम है आदेश कुमार गुप्त थे, तो कार्यक्रम तो अच्छा होना ही था।
प्रदीप सिंह पतरही जौनपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि 3 जून को प्रसारित इंडिया बोल की तारीफ की है और आगे लिखा है कि मलय नीरव अपने पहले से रंग में नजर आए लेकिन उस प्रोग्राम के असली हीरो वात्सल्य राय रहे जिनका बोलने का अंदाज सबसे अलग था। इनका सवाल है, सुशीला सिंह को आपने कहाँ छिपा कर रखा है?
सुशीला सिंह को कहीं छुपा के नहीं रखा है। सुशीला सिंह के पास दूसरी जिम्मेदारियाँ हैं इसलिए वो दूसरी डेस्क पर काम कर रही हैं, इसलिए आजकल रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं। रही बात वात्सल्य की, तो बिल्कुल ये बात मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इनकी कि वात्सल्य राय ने बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम किया। हालांकि उनका ये पहला कार्यक्रम था इंदु जी, पहली बार उन्होंने इंडिया बोल प्रसारित किया था और लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की है।
दौलत गौड़ ने ईमेल लिखा है कि 3 तारीख का इंडिया बोल सुना, प्रस्तुता का बहुत अच्छा प्रयास था किंतु मुझे तो इन वर्षों में जो सबसे बड़ी कमी आपकी सभाओं में दिखती है जो मुझे और मेरे जैसे भाषा के प्रेमियों को अवश्य ही आंतरिक पीड़ा देती है और वो है शब्दों का अशुद्ध उच्चारण। फिर मैं तो आवाज़ की दुनिया के ही दोस्त हूँ दृष्टिबाधित होने के कारण।
दृष्टिबाधित हैं इस वजह से सिर्फ रेडियो सुनते हैं। ऐसी ही एक चिट्ठी उच्चारण पर एक और हमारे श्रोता ने लिखी है।
संभल से तनवीर आलम है ये और इनकी भी शिकायत यही है कि BBC हिंदी का उच्चारण ठीक नहीं है, बहुत सारे प्रसारकों को उर्दू की जानकारी नहीं है।
ये बात बिल्कुल आपकी सच है और हमारे तमाम दूसरे श्रोताओं को भी कई बार ये बात खटकती होगी कि कुछ उच्चारण हमारे यहाँ से गलत जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो नई फसल है वो रेडियो के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वो अलग अलग प्रिंट के, टेलीविज़न, दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, तो धीरे 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 वो चीज़ें सुधरती हैं, उस पर काम चलता रहता है। हमारे सहयोगी साथी लोग अपनी उच्चारणों पर काम करते हैं और जो गलत चीज़ें होती हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें सुधरी भी हैं, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सब कुछ 100% सुधर गया है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं।
और ये ईमेल भेजा है जसदेव सिंह सिनवार ने, ग्राम गुहावली पोस्ट 57 तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर राजस्थान से। लिखते हैं कि मैं 21 साल का हूं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। बीबीसी हिंदी करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए अच्छा माध्यम है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होता है।
जसदेव सिंह जी, आप 21 साल के हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा आप बीबीसी के तमाम कार्यक्रम और जो हमारी वेबसाइट है उसको लगातार पढ़ा करें, हमारे कार्यक्रम सुना करें, सफलता आपके कदम चूमेगी।
और हमेशा की तरह जंग बहादुर सिंह गोलपहाड़ी जमशेदपुर से लिखते हैं कि विवेचना में हम राज कपूर पर कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे,
लेकिन कार्यक्रम हुआ ख्वाजा अहमद अब्बास पे।
जी
जी, तो राज कपूर को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में इतने बरसों से मैंने तो किसी को बात करते सुना नहीं, तो रेहान साहब का तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि ख्वाजा अहमद अब्बास की उन्होंने विवेचना की। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं जंग बहादुर सिंह को कि हमारे दफ्तर में ऐसा कोई भी हमारा साथी नहीं है जो इनके नाम से परिचित ना हो और उनको ये भी याद हो गया कि गोल पहाड़ी में रहते हैं।
ज़रूर, और इन्हीं की तारीफ की है गिरडीह झारखंड से नवीन चंद्र राय ने भी। और अगला ईमेल है विनोद कुमार शर्मा नेहरू पार्क के पास अशोक नगर से, लिखते हैं कि 2 जून की रेहान फजल साहब की विवेचना ने बहुत निराश किया, इसलिए पत्र लिखने का मन हुआ।
निराश क्यों किया? लोग तो तारीफ कर रहे हैं, इनको निराशा क्यों हुई मैं जानना चाहता हूँ।
अब्बास साहब के जीवन वृत्त के कार्यक्रम में इप्टा का नाम इन्होंने नहीं लिया,
इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ये बिल्कुल सही बात कही है। ख्वाजा अहमद अब्बास इप्टा से जुड़े हुए थे और इप्टा के बड़े महत्वपूर्ण लोगों में से थे, शायद चूक हो गई रेहान फजल साहब से, इप्टा का जिक्र नहीं हो पाया।
और अगला ईमेल थोड़ा खास है, कृष्ण कुमार मिश्र प्राचार्य नवोदय विद्यालय ईस्ट गारो हिल्स मेघालय से ईमेल आया है।
ये खास क्यों है?
खास इसलिए है कि कृष्ण जी ने लिखा है, अत्यंत मृदुभाषी राजेश जोशी जी गुरुवार दिनांक 25 मई को संयम खोते हुए पत्रों के उत्तर दिए।
अरे बाप रे बाप, अब मैं इसको क्या जवाब दूं?
ऐसे तो वो चारों पत्र लेखक ज्यादा निराश हो जाएंगे। भाई साहब, बीबीसी को तो मैं चंदन की शीतलता का प्रतीक मानता हूँ।
कृष्ण कुमार जी, आपने जिस तरफ मेरा ध्यान दिलाया है मैं उसको बहुत ही गंभीरता से लेता हूं, और मुझे दरअसल इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि श्रोताओं तक जो बात पहुंचेगी वो विनम्रता की बजाय एक बहुत ही गुरूर भरा कोई स्वर पहुंच जाएगा, इसका मुझे एहसास नहीं था। और अगर आपको ऐसा लगा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ,
बिल्कुल
अनकंडीशनल जिसे कहते हैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ। और अब समय नहीं है इसलिए चलते चलते श्रोताओं को पता बता दें।
जी
तो दोस्तों, हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो नोट कीजिएगा hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
आपके पत्रों के साथ थे राजेश जोशी और इंदु पांडे। और उधर चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच ओवल में मुकाबला होता हुआ बांग्लादेश की टीम खेल रही है। इंदु, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
जी, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ग्रुप ए का ये 5वां मैच है। ताज़ा स्कोर है 3 विकेट खोकर 100 का आंकड़ा पार कर लिया है बांग्लादेश ने। हालांकि बांग्लादेश की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी, 22 रन बनाकर बांग्लादेश का 1 विकेट गिर गया था। और दोनों टीमों ने एक एक बदलाव किया है और दोनों ही टीमें एक एक स्पिनर को टीम में जगह दी है उन्होंने। बांग्लादेश ने मेहदी हसन और ऑस्ट्रेलिया ने एडम जंपा को शामिल किया है। चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि पहले मैच के बाद दोनों टीमों के सामने नॉकआउट जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां बांग्लादेश को टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में जहां इंग्लैंड के सामने बेहतरीन बैटिंग करने के बावजूद 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया को अंक बांटने पड़े थे।
बहुत बहुत धन्यवाद इंदु आपका। और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। सऊदी अरब समेत 6 देशों ने कतर के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए हैं। इन देशों ने कतर पर चरमपंथ को समर्थन देने का आरोप लगाया है। कतर ने कहा है कि उस पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में पुलिस का कहना है कि ऑरलैंडो में हुई गोलीबारी की घटना में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। लंदन में हुए हमले के 2 दिन बाद आज से ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।